नमस्कार श्रोताओं, एक नारी सब पर भारी के इस हफ्ते के एपिसोड में आइए सुनते हैं हमारी एक दृष्टि बाधित श्रोता डिंपल की प्रेरणात्मक कहानी।
मत समझो कि मैं हूँ केवल नारी, मत भूलो कि मैं ही हूँ सब पर भारी। मेरा बचपन बहुत अच्छा रहा, मैं जन्म से ही दृष्टि बाधित हूँ। मेरे माता पिता मेरे कैरियर को, मेरे भविष्य को लेकर काफी जागरूक थे, क्योंकि मैं एक शिक्षित परिवार से हूँ और मेरी स्कूली शिक्षा जो थी वो 9.5 वर्ष की आयु में 1984 में शुरू हुई थी। वैसे उससे पहले मैंने घर में ही एक दृष्टिबाधित महिला से ब्रेल सीख ली थी और मेरा एडमिशन सीधे फर्स्ट में हुआ था। जहाँ तक मैं इस दौरान कुछ थोड़े छोटे मोटे मीठे अनुभव या संघर्षों की बात करूँ तो फर्स्ट टू फिफ्थ तक हम लोगों के पास अच्छी बुक्स भी थी और मेरे पेरेंट्स तो खैर थे ही सपोर्टिव, सभी मुझे पढ़ाना लिखाना घर में जब भी मैं आऊँगी। तो 85 में मैं फर्स्ट टू थर्ड करके सीधे एक साल और मेरा बच गया। इस तरह से मैंने 95 में पूरा 12th पास कर लिया और मेरी शिक्षा जो थी वो दिल्ली में स्पेशल ब्लाइंड स्कूल राष्ट्रीय विरजानंद अंध कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई थी। और इस दौरान जो मुश्किलें वो थोड़ी बहुत आई, लेकिन अच्छा लगता था उनको देखकर भी कि बुक्स हमारे पास जो 5th तक तो बुक्स होती थी, 8th तक भी थोड़ी बहुत कमी थी, ज़्यादा नहीं, फिर भी वो चल जाता था। लेकिन 9 से 12 तक जो है सिर्फ एक या दो सेट्स होते थे हमारे पास, उसमें 15 या 16 स्टूडेंट्स में। तो उसमें क्या होता था कि हम लोग कुछ घर से कुछ वॉलंटियर्स की मदद से लिख लेते थे और कुछ हम लोग रिकॉर्ड भी करते थे, तो हमें शॉर्ट नोट्स भी बनाने पड़ते थे ताकि अगर लाइट ना हो तो हम खुद अपने ब्रेल से अपने परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। तो खुद लिखने से, खुद पढ़ने से एक तो कुछ और भी अच्छा सीखने को, कुछ जानने को मिलता था, स्वयं का प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होता था, ये फायदा था उसमें। संघर्ष तो खैर सभी के जीवन में होते हैं, थोड़ा बहुत अनुभव होना भी चाहिए। और इसके अलावा जो मेरा टाइम यूटिलाइजेशन था, 1993 में जब मैंने 10th का एग्जाम दिया तो मेरे पास जो टाइम बचा उसको मैंने इंग्लिश टाइपिंग सीखकर यूज किया। और उसके बाद 1995 में जब मैंने 12th के एग्जाम दिए तो ड्यूरिंग दैट पीरियड जो है मेरा 4 मंथ्स का टाइम मेरे पास था, उसमें मैंने अप्रैल टू जुलाई तक नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, जो कि मेरे ही जन्मभूमि यानी फरीदाबाद में है जहाँ मेरा जन्म हुआ वहीं पर ही था, तो वहाँ से मैंने टेलीफोन ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट की ट्रेनिंग की। 1998 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपने कैरियर को, जो कि मेरी एक लाइन थी, पसंदीदा लाइन थी, जो कि मेरी हॉबी भी थी कि मैं टाइपिंग करूँ, तो मैंने हिंदी स्टेनोग्राफी किया। सौभाग्यवश हिंदी स्टेनोग्राफी खत्म होने के बाद ही 1999 में नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड फरीदाबाद में ही मुझे एक हिंदी स्टेनो टीचर के रूप में जॉब मिल गई और मैंने उस प्राइवेट जॉब को ज्वाइन किया। मुझे काफ़ी मान सम्मान मिला, स्टूडेंट्स का भी, स्टाफ का भी, मेरे बॉस भी मुझे काफ़ी वो करते थे। और जब मैंने वहाँ से 2002 में मैंने वहाँ से रिजाइन दिया था कि मैं ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड में वापस फिर से प्रूफ रीडिंग में आ जाऊँ ताकि मेरी प्रोग्रेस हो जाए, तो वो रिज़ाइन भी मेरा मतलब मंजूर नहीं किया जा रहा था, सिर्फ मेरी इच्छा से मंजूर हुआ। हालांकि मेरे जो बॉस थे नैब के, NAB नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के, तो वो यही कहते थे कि हमारी प्रोग्रेस तो रुक जाएगी लेकिन आपकी हो जाएगी। और अंत तक उन्होंने बिना पूछे जो है मेरा रिज़ाइन मंजूर नहीं किया, अंततः उन्हें करना पड़ा। और 2002 से 2003 तक मैंने AICB में प्रूफ रीडिंग का जॉब किया, जिसमें कि हम लोगों को ब्रेल बुक्स चेक करनी होती है, वहाँ एक प्रेस है तो उसमें लिख के कि क्या मिस्टेक्स हैं, ये भी जॉब मैंने की, मुझे यहाँ भी एक्सपीरियंस अच्छा लगा।
इस हफ्ते डिंपल की कहानी में इतना ही, कहानी का शेष भाग हम सुनेंगे अगले हफ्ते। सुनते रहिए एक नारी सब पर भारी। और जाते जाते श्रोताओं, अगर आप भी अपनी कहानी हमसे साझा करना चाहते हैं तो फोन में नंबर 3 दबाकर अपनी बात रिकॉर्ड करें। अगर आपकी कहानी में हुआ दम तो हो सकता है जल्द ही आपकी कहानी हो हमारे कार्यक्रम का हिस्सा। नमस्ते।